उम्मीद की कुछ और किस्में, अनवा नौ को कहते हैं अकसाम किस्म से, उम्मीद और रजा तीन किस्में हैं, दो तो पसंदीदा हैं और एक नापसंदीदा है। जो पसंदीदा है वो कौन सी हैं? नंबर एक, वो शख्स सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहा, अल्लाह ताला के अता करदा नूर बसीरत की रोशनी में इताअत भी की, फरमाबरदारी भी की, नमाजें भी पढ़ी, फ़राइज़ किए, हुकूक़ुल इबाद किए, यानी वो बंदा जिसने नेकियां ही नेकियां की अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। तो ये कौन सी रिजा है, ये कौन सी उम्मीद है, तारीफ़ के काबिल है पहला शख्स। अब दूसरा देखिए, बड़ा स्लाइड सा फ़र्क है। पहले गुनाहगार था, नाफरमान था, ज़िंदगी में बहुत कुछ था, अब क्या हुआ, तौबा की तौफीक मिल गई। जब तौबा की, अपने पिछले गुनाहों को चेंज किया, आगे बेहतर हुआ, तो अब अल्लाह से मग़फ़रत की उम्मीद लगा रहा है। अब उसको पता है कि मैंने किए तो बहुत सारे गुनाह थे लेकिन अल्लाह ने माफ़ कर दिया, दरगुजर का मामला कर दिया, तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। ये कौन सी रिजा है? काबिले तारीफ़ है, बहुत अच्छी है। एक तीसरी रिजा है जो मज़मूम है, मज़मूम ही मुज़म्मत के काबिल, अच्छी नहीं है। वो क्या करे? गुनाह, नाफरमानियाँ और ख़ताओं में भरा हुआ, हर तरह से अपने आप को ऐसे रखे लेकिन उम्मीद अल्लाह की रहमत की लगा दे और बग़ैर अमल के मग़फ़रत की उम्मीद लगाए, चूँकि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है तो मुझे बख्श देगा, तो ये धोखा है, इसकी कोई हैसियत नहीं। देखिए, दुनिया में किसी इस मुल्क के कानून के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो बेगुनाहों को भी पकड़ लेता है और मुजरिमों को भी पकड़ लेता है। आप उस मुल्क को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यहाँ अंधा कानून है, कोई राज ही नहीं है। या दूसरी सूरत इससे भी बुरी हो कि नेकियों वालों को तो ये जेल में डाल देंगे, अच्छे काम करने वालों को जेल में डालेंगे और बुरे काम करने वालों को ये खुला छोड़ देंगे। आप उस मुल्क के कानून को क्या कहेंगे? बेकार कानून है ना। कई लोगों ने अल्लाह से नाउज़ु बिल्ला ऐसे ही बेकार सेटअप की उम्मीद लगाई हुई है, कहते हैं मौलवी इनको तो अल्लाह ने पता नहीं कहाँ डालना है, ये दाढ़ियों वाले अल्लाह पूछेगा, ये हिजाब पहन के चुगलियाँ करती हैं, मैंने खुद देखा था, चार बाल दिख रहे थे उनके हिजाब के, यानी नेकों के बारे में उनका गुमान क्या, ये सब आग में जाएंगे। फिर लतीफ़े भी करेंगे कि सबको तो अल्लाह ने डालना है, कुछ को जन्नत में कुछ को जहन्नम में, ये मौलवियों को अल्लाह कहता है पता नहीं मैं कहाँ डालूँ, ये तो इसके भी काबिल नहीं, ये उसके भी काबिल नहीं, नऊज़ु बिल्ला। और बाकी रह गए हम मासूम लोग, हमें गुनाहों का पता ही नहीं, वो देखो बेचारी कपड़े पहन के बाहर आना भूल गई, हाउ स्वीट, हाउ इनोसेंट शी इज़, वो तो स्लिप में ही आ गई, वो बहुत बोली है ना, उनको पता ही नहीं चलता, और वो उनका दिल बड़ा पाक है, उनको पता ही नहीं चलता मुझे कोई देखता, ये हालात होते हैं। तो आप वही कानून है कि जेलों में डाल दो अच्छे काम करने वालों को और मुजरिमों को सड़कों पे छोड़ दो, अल्लाह के साथ इसमें से कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। अबू उस्मान अल हैरी कहते हैं कि सआदतमंदी और नेक बख्ती की अलामत क्या है, उसमें से एक अलामत कि तुम अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के काम करो, ये अपने ऊपर लें, मैं अल्लाह की इताअत और उसकी फरमा बरदारी के काम करूँ, इसके बावजूद मुझे इस बात का खदशा लगा रहे कि पता नहीं कबूल हुई है या नहीं हुई। और बदबख्ती क्या है? कि तुम नाफरमानियों पे नाफरमानियां करो और उम्मीद से लगाओ कि निजात मिल जाएगी या कामयाबी से हम किनार हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलेंगे कि जो बिल्कुल इससे ऑपोजिट सोच रखते हैं। वो क्या सोचते हैं देखना, बस एक अचानक ही मामला कोई होगा, क़यामत का दिन क्या है, बस एक बिग गेट टुगेदर है, हमने तो वैसे ही किसी मौलवी के पीछे छुप जाना है, किसी नेक के पीछे छुप जाना है, किसी की बैत ली हुई थी उसके पीछे छुप जाना है और अल्लाह को पता ही नहीं चलेगा। अब एक सवाल उलमा ने उठाया बड़ा मज़े का कि दो किस्में थी पसंदीदा किस्म की उम्मीद की, उसमें से बेहतर कौन सी है? मैं आपसे ही पूछती हूँ, आगे पढ़े बगैर बताइए। एक वो शख्स है जिसने नेकियाँ ही नेकियाँ शुरू से की और अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी नेकियाँ कबूल हुई, दूसरा वो जो पहले गुनाहगार था अब नेक हुआ, दोनों में से बेहतर कौन है? कितने लोग हैं जो कहते हैं पहली किस्म का शख्स बेहतर है क्योंकि उसने गुनाह किया ही नहीं, वो हैंड रेस करे, उसके नामे माल में कोई खराबी आई नहीं, और कितने लोग कहते हैं दूसरा बेहतर है? वजह? शाबाश, देखिए दोनों तरफ को सही कहा गया। एक वो जिसने गंदगी डाली कोई नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर फिर किब्र आ जाए, उजूब आ जाए, बड़ाई आ जाए कि हम तुझे नेक हैं। जैसे एक ऐसी बातें प्रैक्टिकली ज़िंदगी में होती हैं एक सिस्टर थी तो वो माशाल्लाह आलिम की बेटी हैं, जिन्होंने आंखें उस घर में खोली कि जहाँ दरवाज़ों पे भी इतने बड़े बड़े पर्दे होंगे और वहाँ बहुत पाबंदियाँ। तो वो किसी मौके पे किसी दूसरी से कह रही थी, मैंने तो आज तक गाना सुना ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। तो जो दूसरी तायबा थी, तायबा समझ गए, उसने कहा फिर आपको क्या पता कि गाने छोड़ना कितना बड़ा जिहाद है, आपने तो सुना ही नहीं, आपने चखी कोई नहीं, हमने चख के छोड़ी है। तो जो मेरा अपना ज़ाती मेलान दोनों में से लगता है कि दूसरा शख्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हैं दोनों बेहतर, दलाइल दोनों के लिखे में आप पढ़ लीजिएगा और रीज़न दोनों की समझ आती, लेकिन दूसरे में आजजी, जिल्लत का एहसास। देखिए मैं एक दफ़ा एक जुमला बोला था, कहीं शायद लिखा आपने भी, कि बाज़ दफ़ा अल्लाह किसी से बहुत बड़ा गुनाह क्यों कराता है ताकि बाद में उतने ही शर्मसार दिल से उसकी तरफ आए। बस बड़े बड़े गुनाह इंसान को बहुत बड़ी बड़ी नेकियों की तरफ ले आते हैं। गिल्टी था ना वो 100 लोगों का कातिल, 99 को मार दिया, फिर क्या करूं किधर जाऊं। पूछा किसी से, हल ली मिन तौबा, है मेरी कोई तौबा? कहा तेरी तौबा कहाँ होगी। वो आबिद था जिससे पूछा, आलिम नहीं था। कहा तेरी कोई तौबा नहीं है, एक कतल ही इतना बड़ा गुना है तेरे ऊपर, तो 99। कहा अच्छा, फिर जब 99 की है तो राउंड फिगर करके तुझे भी बुरा कर दूं। उसको भी मार दिया, 100 कर दिए। लेकिन असल में देखा जाए ना, तो उसका ये 100वां कत्ल तौबा का हिस्सा था कि मैं गुनाह की गंदगी से निकलना चाहता हूँ, तुम मुझे निकाल ही नहीं रहे। बल्कि ये वाक्य आप इसमें नोट करें, लोगों को जब हम बेउम्मीद कर देते हैं तो वो मजीद फिर गुनाह करते हैं। वो कहते हैं अब गंदे तो हो ही गए हैं, तो फिर और सही, तुम बड़े पाक दामन हो, हम तुम्हें भी नहीं रखते। लेकिन वो दिल में एक उलक था ना कहीं चोट लगी हुई थी कि मैं निकलना निकलना, और अल्लाह ने किसी साहिब इल्म से मिला दिया और उससे पूछा हल्ली मिन तौबा। कहा क्यों नहीं, अल्लाह तो कहता है जो गुनाह से तौबा करे वो गोया कैसे है जैसे उसने कोई गुनाह किया नहीं। अतायब में नजम बिकमल लाजम बलहू, उसने तो गुनाह किया नहीं। कहा अच्छा कैसे, ये करो बस निकलो, तौबा करो, ये बस्ती छोड़ दो, यहाँ से भी बड़ी बात है। वो सोहबत छोड़नी पड़ती है वक्ती तौर पर, वो दोस्त, वो महफिलें, वो पार्टियाँ, क्योंकि वहाँ वो आपको निभने ही नहीं देंगे, वो तो आपके कपड़े भी खींचेंगे कि आज बड़े कपड़े पहन के तुम आ गई हो। खैर वो जब वहां से निकला और कहा कि तुम्हें किसी अच्छी बस्ती में जाना है, यानी सोहबत तो वक्ती तौर पे बदलनी पड़ती, ये तो लिख ले। गुनाहों में इंडल्ज लोगों को अगर निकलना है ना, वक्ती तौर पे सोहबत बदलनी पड़ेगी, वरना वो कभी दूसरे दोस्त आने नहीं देंगे। मुझे इस वक्त भी सूरत यूनुस की गालिबन आयतें हैं कि कुछ उसके साथी हैं जो उसको पुकारे, इधर आ इधर आ, हिदायत का लफ्ज उसमें बहुत बार है, बहुत ही खूबसूरत आयत है, हम उसको इन्जॉय करते होते हैं, सूरह यूनुस की है। तो उसमें यही आता है कि वो निकल रहा है, हैरान उस परेशान है, और उसके पुराने साथी उसको कहते हैं तुम इधर आओ, लेकिन नए साथी उसको कहते हैं नहीं हिदायत की तरफ आओ। तो ये थोड़ी सी एक कोशिश के बाद जब कोई निकलता है तो उसमें फिर गिल्ट भी होता है, उसको रोना भी आता है, उसको अपने पिछले गुनाह भी याद आते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि अगर गुनाहों में डूबे हुए हो तो तौबा कर लो, फिर उम्मीद लगाओ। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको मौके ही नहीं दिए गुनाहों के, तब ये ना करें कि पहले गुनाह करें फिर तौबा करूं। एक दफ़ा गुनाह का चस्का लग जाए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। खुशबख्त हैं वो लोग जिन्होंने गुनाह को चखा ही नहीं है, और वो लोग उससे भी बड़े खुशकिस्मत है जिन्होंने इसको चख के छोड़ा। मेरे पास अभी भी फ़ोन में एक शेयरिंग है किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में से, एक सिस्टर की थी तो उन्होंने मुझे भी भेज दी, मेरे हाल पाकिस्तान या इंडिया की होंगी। तो उन्होंने यही लिखा हुआ था कि कुछ उनको हमारा नहीं पता, हम कौन है, मैं कौन हूँ, नूरुल कुरान कौन है, किसी के होते हुआते किसी ने उनको ऐड कराया। तो उस पर उनका फीडबैक था कि जिसका खुलासा वो यही था उनका, कि कहती हैं कि मैं कुरान भी बहुत सुनती थी, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना और मैं तकाबुल के लिए बहुतों को सुनती, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में सारे काम करती थी और मुझे लगता था कि मैं करूं सब कुछ और ये भी है। खैर किस्सा मुखसिर, अभी उसने 2 लेसन सुने हैं, अभी चूंकि शुरू से कुरान शुरू हुआ है तो इंट्रो के बाद सूरह फातिहा सुनी है। तो कहने लगी कि उसका टॉपिक ही ये है कि आफ्टर लिसनिंग 2 लेसन, कहती है मैंने ये 2 लेसन जो सुने हैं ना, तो मैं उस पर मजबूर हो गई हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप मुझे अपनी उस पिछली ज़िंदगी को छोड़ना कितना आसान लग रहा है, और जिसके लिए मैं कितने सालों से चपकिचलश में थी, अब मुझे लगता है कि मेरे पाँव लग गए। तो अब आप देखिए उसके लफ्ज़ से अंदर जो असल में सुनाना चाह रही थी कि उसने कहा मैंने हर गुनाह कर लिया लेकिन अब मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। तो किसी भी गुनाहगार को देखें, शराबी के हाथ में बोतल भी है ना, किसी को आप कभी उसकी आंखों में देखें ना, तो आपको उसके अंदर एक बेचैनी और एक इज़्तिराब दिखेगा। इसलिए कभी गुनाहगारों से नफरत ना करें, पहले खुद आप एंटी, वो कहना चाहिए वायरसेस बन जाए कि आप ना उस असर में चले जाएं। जब आप खुद को स्ट्रांग कर लेते हैं, انشاءاللہ یہ لوگ آپ کے لیے بہترین مدعوین ہیں، ان سے جا کے بات کریں، مت مایوس ہو ان سے، ان کو پوچھیں سناؤ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، اور انشاءاللہ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے جس کی خیر مقصود ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس کے کیا کوئی سٹیپس بھی ہیں، ابھی تو قسمیں دیکھی، اس کے سٹیپس ہیں. امید اور رجا کے اگر آپ دیکھیں تو تین مختلف درجے آپ کو ملیں گے. پہلا درجہ کیا، اب اس کو سمجھیے اور میں نے اور اپنے لیے آپ نے اپنے لیے لانا ہے. پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ مومن کس بات کی امید لگاتا ہے، کہ میں عبادت کروں اس امید پر کہ میری یہ عبادت قبول ہوگی تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. یعنی سب سے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ امید کی کیا ہے، کہ مومن کے اندر عبادت میں جد و جہد صرف کرنے اور کوشش کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. یعنی امید کی وہ قسم جو بندے کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کر دے، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. بس ابھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ہمارے کلچر میں آج بھی وظیفے کرنے والوں کی کمی نہیں، پنج سورہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں، نفلی نمازیں پڑھنے والے کم نہیں ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے کم نہیں. یہ پہلا درجہ ہے، یعنی وہ امید جو بندے کو صرف عبادت کرنے پہ مائل کرے. پھر آہستہ آہستہ عبادت میں لذت آتی ہے، یہ ہے، کتنی بھی سخت عبادت کیوں نہ بندہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو امید ہے کہ میری یہ عبادت قبول ہوگی، اور دوسروں کو جو کام مشکل لگتا ہے اس کو آسان لگتا ہے، کیونکہ وہ پر امید ہے. اللہ کے لیے جد و جہد کرنا ہے یا کچھ بھی نیکی کرنی ہے وہ کر پڑتا ہے اور چل پڑتا ہے. سفر کرنا پڑے سفر مشکل نہیں لگتا. اور آپ نے دنیا میں کاروبار کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ راتوں کی نیندیں بھی برباد کرتے ہیں، دور دور کے سفر بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، گھر سے بے گھر ہوتے ہیں. کیوں؟ جتنا کمائیں گے اتنا ملے گا. 7 بجے دکان کھولیں گے تو زیادہ گاہک آ جائیں گے، 9 بجے کریں گے تو 2 گھنٹے کی سیل رک جائے گی. بالکل ایک کامیاب تاجر کی طرح ایسے لوگ نیکیوں کے مواقع کو اختیار ہی کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے وہ کریں گے. تو یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایسا بندہ اللہ کی خوشنودی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، نماز پڑھے گا. سب سے مشکل چیز نیند ہے. جب نفس پہ قابو پا کر نیند کو چھوڑ کر فجر پڑھے گا، سردیوں میں وضو کرے گا، طہارت حاصل کرے گا، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرے گا، پسینے بہائے گا، چلے گا، منا مزدلفہ کے چکر لگائے گا، تو ان ساری چیزوں کو وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ میرا یہ اجر ضائع نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ایک انسان واقعی اللہ کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے. ایک عالم کا قول ہے، میں نے 20 سال تک قیام اللیل کے سلسلے میں محنت اور مشقت صرف کی، 20 سال تک محنت کرتا رہا کہ راتوں کو جاگوں، جس کے نتیجے میں 20 سال تک اس کے سائے میں ناز و اندام کی کیفیت محسوس کرتا رہا. یعنی لوگ تو یہ سوچیں گے کہ میں نے قیام اللیل کیا مجھے مشکل لگا، لیکن وہ 20 تو وہ تھے، مجھے تو اس کے بعد بھی لذت محسوس ہوتی رہی. وہی بات ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ عبادت بندے کی عادت بن جاتی ہے. یہ بھی لکھ لیں جملہ، عبادت عادت بن جاتی ہے. پھر بعض وقت احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ نیکی کا کام نہیں ہے. تو جب تک عبادت میں لذت نہ ہو عبادت کا مزہ نہیں، اور جب تک امید نہ ہو کچھ ملنے کی عبادت میں لذت آتی نہیں. اللہ کی طرف سے اجر ملنے کی امید بری عادتوں کو چھڑوا دیتی ہے. آپ گھر کا راحت اور آرام چھوڑ دیتے ہیں. صبح جو روز اٹھتے ہوں گے تو اللہ کو یہی کہہ کے آتے ہوں گے کہ اللہ تیرے لیے، ورنہ ہم بھی سوئیں. کئی لوگ ہیں آج کے دور میں اس وقت بھی سو رہے ہوں گے، ظہر پہ اٹھیں گے اگر پکے نمازی بھی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ راتیں جاگتے ہیں تو دن سوتے ہیں، تو ہمیں بھی سونا اچھا لگتا، ہم بھی ذرا نکلتے اس موسم کو انجوائے کرنے. لیکن اللہ ہم اس لیے تیرے اس کام کے لیے آگے کہ ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں اس کا اجر دے گا. ایک وقت ہوتا ہے بندہ امید کے لیے کام کرتا ہے کچھ اجر کے لیے. کل کسی نے ایک جملہ بولا، میں بعد میں بھی سوچتی رہ گئی، کسی نے کوئی کام کرنا چاہا اور وہ کریں گے، تو میں نے ان کو کہا کہ چلیے آپ یہ کام کیجئے، اگر وقت آیا تو وہ بات ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو آپ کو اجر تو مل جائے گا. تو ایک دم ان کے منہ سے کیا نکلا، میں نے اجر کے لیے نہیں وہ کام کرنا، میں نے آپ کی محبت میں کرنا. بھائی میری محبت میں کیا کرنا، یعنی ان کی بات میں سمجھ گئی تھی، یعنی ان کا مطلب تھا کہ اس وقت مجھے ثواب کا بھی کوئی اتنا نہیں ہے، مجھے یہ ہے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا وہ ہوگا. تو بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کام شروع کرتے ثواب کے لیے، لیکن بعد میں وہ پھر ان کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چیز شروع میں، مثال ہے پان کھانے کا عادی شخص ہے، شروع میں پان کھاتا ہے मज़े के लिए, फिर एक वक्त आता है कि वो पान उसकी ज़रूरत बन जाता है। तो इंसान उम्मीद लगाकर काम शुरू करता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो फिर उसकी लज़्ज़त बनती है। आप कहते हैं इट्स माई प्लेयर, ये मेरी खुशी है। तलाक हो सकता है, कहते होंगे सो जाओ अभी कोई बात नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, रात सो जाओ। वो कहते नहीं, अल्लाह ताला इट्स माई प्लेयर। अल्लाह ताला कहेंगे ठंड बहुत है, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगा, तुम्हें ऐसे ही राजी हो जाऊंगा। तो बंदा कहते नहीं अल्लाह ताला इट्स माई प्लेयर, आई वॉन्ट टू डू। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो ये अल्लाह के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक बनने वाली होती है। और आप देखिए कि इसी के अंदर फिर रोजे भी हैं, सदका खैरात भी है, फिर इसी में अल्लाह की रजा पे राजी रहना भी है। जुमला पढ़ के सुनाती हूँ आपको। अगर तुमको कजा व कदर पर राजी ब रजा रहने का अजर और सवाब का सही मानों में इल्म हो जाए, तो तुम्हारे सामने मुसीबतों और दुखों पर सब्र करना कोई मानी ही ना रखे, हत्ता के अजर और सवाब के हसूल के लिए कड़वा भी तुमको मीठा लगे और इस राह में जहरे हलाहल कंद बन जाए। मैं आपको इस मिसाल से ये समझाती हूँ। मैंने अपनी सास को देखा है, वो शुगर पेशेंट है, तो कच्चे करेले लेकर ना उनको वो थोड़ा सा धो के ना, तो उसको वो क्रश करके ना ऐसे, जैसे वो कच्चा पक्का सा मोटा, फिर उसको कपड़े में डाल के ना उसको निचोड़ के, तो वो बिल्कुल ये जैसे ये स्मूदी रखी होगी ना अगर, तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर का करेलों का पानी पीती हैं। कभी मैंने उनको पीते देखा है। तो आप देखने वाले का क्या हाल है, हाय करेले कच्चे कड़वे और उसमें कुछ नहीं और डालना, लेकिन वो क्यों पी रही हैं, क्यों उनको उससे फायदा होगा ना। अब वो कड़वे करेले उनके लिए आसान क्यों हो गए, क्योंकि उनको शुगर की दवाइयों से बचना है। इसी तरह कड़वी कसीली अबादात बंदे के लिए मीठी गोलियां बन जाती हैं। और मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों के हाथ में तो कड़वे करेले भी मीठे लगते हैं, क्योंकि वो मिठास के साथ बनाते हैं, प्यार के साथ वो काम करते हैं। आप किसी इंसान की मोहब्बत में खाना पका के देखें, उसको आप अल्लाह के साथ ले आए। मेरी आपकी ये इबादत जो है ना, ये किसी चिल्ले कशी से ठीक नहीं होगी, और ना ये हराम और हलाल के फतवों से ठीक होगी। वो एक शेर है, मुझे उसका मफहूम नहीं, लेकिन वो मकसद उसका ये है कि जानता हूं मैं नमाजों का अजर क्या है, पर क्या करूं तबीयत उधर नहीं आती। तबीयत उधर आएगी जब उम्मीद लग जाएगी, जब आप तसव्वुर में देखेंगे कि आपका ग्रेजुएशन डे है, सब खड़े हैं अगले पिछले, और अल्लाह ताला पुकारते हैं वहम मनूत या किताब बहू भी यमीन ही, आओ तुम दाएं हाथ में नाम है मालो। जिस वक्त आप अल्लाह ताला से उम्मीदें लगा लेते हैं ना, आप देखें तन्हाई में सोचा करें, और ये बात मैं कोई गलत नहीं कहने लगी, कुरान सुन्नत से ये साबित है कि जन्नत में जाने के बाद बंदे की वन ऑन वन बेस्ड अल्लाह से भी बातचीत होगी। आज जिंदगी में कोई ऐसी नेकी करें और उसको कहीं छोड़ दे के अल्लाह इसके बारे में बातें जन्नत में करेंगे, और कोई गुनाह जो आप करते हैं ना, जो सुस्ती है या कोई अमल, यही कह रही हूँ कुरान के लिए आप उठ के आते हैं ना, जिस्म टूट रहा है, आंखें बंद हैं, तकलीफ है और सारा घर सो रहा है, ये और दुख की बात होती है जब दूसरे सो रहे होते हैं, उस वक्त है कि अल्लाह ताला मैंने इसकी लज्जत उस दिन लेनी है जब मैं तेरे से बात करूंगी। और दुआओं में ऐसे इशारे मिलते हैं, मसनून दुआएं देखिए, अल्लाह के नबी कहा करते थे कि अल्लाह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो जिस दिन मेरी तुझसे मुलाकात है। तो उम्मीद बहुत बड़ा सहारा होती है। हम किसी अपने प्यारे को कोई तोहफा भेजते हैं क्या सोच के कि जब उससे मुलाकात होगी तो फिर वो बताएगा। आजकल तो मुलाकात की भी जरूरत नहीं होती, पहले ही मैसेज आ जाते हैं, टेक्स्ट थैंक यू सो मच। क्या इतनी सी बात पे आप किसी को कोई अचानक के भेजते ना कि एकदम वो खुश हो जाएगा। तो आप जरा अल्लाह ताला के साथ सोचिए, आपको उम्मीद है कि आपने अल्लाह के लिए कोई काम किया, और ये जो खास तौर पर बात है ना कि उसके फैसलों पर राजी रहे। फिर वही जुमला आ गया जो पहले दूसरे टॉपिक में हमने किया था, जब तक अल्लाह के फैसलों पे राजी नहीं होंगे बड़े काम नहीं होंगे। मैंने अपनी एक टीचर से ये बात पूछी थी कि ये बताइए कि ये सारी बरकत और बहार किस चीज़ की है। अल्लाह ने उनसे भी बहुत काम लिया जो भी उन्होंने किया, अल्लाह ताला ने कई बंदों को आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन खैर होती है अल्लाह उनको तौफीक बड़ी नेकियों की दे देता है। तो उन्होंने यही जुमले बोले थे कि मैंने अल्लाह की तरफ से आने वाले हर फैसले को दिल की खुशी से लिया, कबूल किया, मुझे लगता है मुझे उसका फल मिला। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ जब आप अल्लाह की तरफ से जो फैसले ज़िंदगी में आते हैं ना उसको कबूल तो करें, और दूसरे लफ्ज़ों में रोना धोना छोड़ दें, तरस खाना छोड़ दें। मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते मजबूर लोग, दुखी लोग मुझे भी नहीं अच्छे लगते, किसी को भी नहीं अच्छे लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते, कि मोमिन कभी दुखी नहीं होता। या अपना हक ले लीजिए तो या उसको दिल से निकाल दें। ये कुड़ कुड़ के जीना कोई जीना है? ये तो आप एक बेकार बात करते हैं। किसी के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ऐसे कुछ मामले चलते हैं, लोग पूछते हैं दुख सुख के नाम पे प्रोजेक्ट अलहमदुलिल्लाह। तो अभी कोई इतना पुराना मामला नहीं, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इधर की काउंसलिंग उधर की काउंसलिंग, उनसे जो बात थी मैंने उसमें कहा कि सोच लें, आप बननी है ना तो बना लें, तो बिगड़नी है ना तो फिर बिगाड़ लें, इसको लटकाइएगा नहीं। आप जितना पुराना करके ये रिश्ता छोड़ेंगे उतनी ज्यादा तलख यादें होंगी, उतनी ज्यादा बातें एक दूसरे की याद आएंगी। बच्चा हो गया कोई तो फिर क्या बनेगा, सोच लें। आपको समझ आ गया कि ये नहीं बनना, ये दोनों का दिल नहीं जुड़ रहा, ये नहीं वो नहीं, अव्वल कोशिश कर लें, और वो कर ही रहे होंगे। पहली कोशिश ये कि घर बसे, अब नहीं बन रही ना तो फिर प्लीज ये महरूमी ना पालिएगा कि वो उधर रो रो के जिंदगी गुजार रही है और वो उधर उधर रो रहा है। ये तो सच्ची बात है, वो कहना चाहिए ना कि अपने पाँव में छाले लाना है। इतनी कीमती जिंदगी इंसान की, जो बंदा दुखी है ना वो मेरे इन जुमलों का अपने दिल पे ले। मेरी जिंदगी इतनी कीमती, इसी जिंदगी में इब्राहिम क्या कर गए, इसी जिंदगी में अबू बकर क्या कर गए, इसी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कर गए, तो मैं एक गम को रोग बनाकर कमरे में बंद हो गई हूँ। निकली है गिल्ट से, निकली है परेशानी से, होना था हो गया, यही नसीब था, बस इस कड़वी गोली को मीठा कर लें, इसमें से खैर निकालें। कड़वे ही हैं करेले, लोग क्या कहते हैं इसको कैसे करें, प्याज ज्यादा डाल लो। हमेशा मैं अक्सर सोचती थी बचपन से करेलों में प्याज क्यों होते हैं, वजह समझ आई कि प्याज की असल में मिठास है, तो करेला कड़वा है, तो प्याज करेले टमाटर मिलते हैं तो बैलेंस होता है। आप कड़वे हालात को मीठा कर लें, और ये हर बच्ची में खूबी होनी चाहिए, ना जुल्म सहो ना सहो करो, ला दरर वला दरार, ना दबो ना दबाओ, दूसरों का हक लो नहीं अपना छोड़ो नहीं, ये हमारे मुआशरे में लोग नहीं पढ़ाते। बस ये करना वो करना, और जब बच्ची अंदर से रोगी हो के आती है कहते आप बस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आ जाओ वापस, तेरा बाप है जिंदा है। गलत करते हैं आप, आपने एक जिंदगी को किल कर दिया। राजी रहिए खुश, या तो फिर हंसे। मेरे जहन में एक अपनी दोस्त की अम्मी आती हैं, ये अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे अपने कॉलेज लाइफ की मेरी वो दोस्त थी, तो उसके हालात कभी मैं आपको किसी वक्त सुना दूँ ना, तो वो खुद कहती थी कि मेरी अम्मी के हालात और अपने उसके उस पर पूरा एक नावल लिखा जा सकता है। मुझे तो अब सारी पता है कहानी, वाकई एक फिल्म की स्टोरी कह लें नावल है। क्या कोई सदमा होगा जो उस औरत को नहीं मिला, लेकिन वो आंटी जी थी हमारी, इतना प्यार करने वाली औरत थी कि अपने घर जाने के बजाय सीधा पहले उनके घर जाना, और चेहरा मुस्का, और ऐसे हंसती थी खिल खिल के, कहती थी मुझे जिस दिन ज्यादा गम होता ना मैं और खिलखिलाती, और फिर हंस के दिखाती थी। बहुत सारी ये आंटी असमत से उनकी शिबाहत पड़ती थी, आज मैं उनको देखती हूँ ना, मुझे ये भी मुझे उनसे मिलती भी लगती हैं। इतना अच्छा खाना पकाती थी, अब मूली वाली रोटी मैंने जिंदगी में आज तक उन जैसी खाई नहीं। हम तो बच्चियां थी उस वक्त, लेकिन वो बताती थी कि लोग हांडी पकाते हैं वो तो जान छुड़ाते हैं, वो पहले कच्चा मसाला बनाती पीसती फिर भूनती, पता नहीं क्या कुछ करती, शुगल उनका ये था। लेकिन बड़े गम में वो हंसती, तो जिसे उनको हंसते हुए देखना, आंटी जी आज लगता है कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है, आज इसका अब्बा ये कह गए तो मैं हंस रही हूं। तो उन्होंने जिंदगी भरपूर गुजार दी, अब नहीं है इस वक्त दुनिया में, लेकिन उन्होंने कुछ कर लिया ना, तो जलना जलाना कितना जुर्म है। आप अपना हाथ जला सकते हैं, है किसी को इजाजत कि आप चूल्हे पे हाथ रखे, तो क्या आप अपना दिल जला सकते हैं? जिस तरह कोई जान के अपना हाथ जलाएगा तो दुखी है ना, ये भी जुर्म है। तो इसी तरह याद रखिए, दिल जलाना भी जुल्म है। आप किसी का हाथ नहीं जला सकते, वो तो पुलिस ले जाएगी, तो आप किसी का दिल भी नहीं जला सकते। जो बंदा आपको जलाता है उसको जाके बता दें, देखो भाई आज के बाद ख़त्म, जलने कुड़ने के दिन गए, फैसला करते हैं, आओ तुम्हें क्या समझ आ रही है, चलो फिर, मैं कहती हूँ मौत दिखाए फिर अगला बुखार कबूल करता है। ये हमारे बड़े कहा करते थे, मौत दिखाओ तो बुखार कबूल होगा। हम रात जाते नखरे करते हैं, रात जाते नखरे करते हैं। एक बादशाह था, तो कहते हैं कि उसने सैर का प्रोग्राम बनाया, समंदर की सैर करेंगे कश्ती पे, जो भी कह लीजिए। अब दरबारियों में भी कुछ लोग साथ बिठा दिए कि चलो तुम भी बैठो, साथ ही सारे चलते हैं। अब एक बंदा था उसमें से, उसको समंदर से बड़ा डर आता था। अब क्या हो? वो जरा सी कश्ती हिले ना तो क्या, हाय मैं मर गया, हाय मैं डूब गया। अब वो बादशाह बेचारा भी इंजॉय कर रहा है, कोई देख रहा है मंजर, तो ये उसके रंग में भंग डाल रहा है, हाय मैं मर गया, हाय मैं गिर गया। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ, अब करें क्या, कश्ती किधर मोड़े। कहने लगा कोई अक्लमंद बंदा है इसका इलाज करे। कहने लगा मैं करता हूँ, एक बंदा था उसने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, जूं ही फिर जरा उसने शोर मचाया ना, उसने उसको पकड़ के ना पानी में फेंक दिया। जब पानी में फेंका तो वो डूबा, थोड़ा डुबकियां डुबकियां दी, यानी पकड़ लिए एक हाथ से, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ, अच्छा ठीक हो पकड़ो। उसका हाथ पकड़ के उसको उठाया, फिर कश्ती में बैठा दिया। उसके बाद आखिर तक वो नहीं बोला। बादशाह ने कहा कि ये तुमने क्या किया है? कहने का बादशाह सलामत, पहले इसने डूबना नहीं देखा हुआ था, तो ये कश्ती इतनी आरामदेह इसमें भी चूचा कर रहा था, आज डूब के निकला ना, अब इसको कश्ती सिक्योर लगेगी। यकीन करें अक्सर लोगों का जिंदगी में यह हाल है, जीना ही नहीं आता और जाने का वक्त आ गया। जिंदगी से हासिल कर लें तो जब इस तरह आप देखिए, ये जहर हलाखल क्या होता है, जहर, और कंद कहते हैं चीनी को। एक शेर भी है ना कि मेरी यही बात बुरी लगी लोगों को कि मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद, कि कड़वी चीज को मैंने कभी मीठा नहीं कहा। लोग सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं नहीं कहूंगा ये जायज है, मैं नहीं कहूंगा ये हलाल है, क्योंकि वो है तो वो है। तो इस बात में भी अल्लाह की उम्मीद रखे। ये बहुत आगे आ रहा है एक और, कि दुनियावी मामलों में भी अल्लाह से उम्मीदें रखे, बिल्कुल रखिए, और उम्मीद रखता ही वो है जिसका ताल्लुक भी हो। ये भी याद रखिए, उम्मीद का रिश्ता ताल्लुक का रिश्ता होता है, उसके लिए पहले अल्लाह के साथ फिर कुछ सरगोशियां की होती हैं। आप अल्लाह को अपनी मर्जी के वक्त में जाके मिलें, कभी मिलें कभी ना मिलें, अल्लाह कहता है इधर चलो आप उधर चले, अल्लाह कहता है ये जिंदगी का तरीका आप उधर चले, फिर कोई नहीं ये बातें आती, फिर तो बंदे को शर्म ही आती रहती है अल्लाह से, फिर वो बात करने का क्या वक्त होगा। तो लिहाजा इंसान की ये फितरत है कि वो अपनी पसंदीदा चीज से उस वक्त तक दूर होने को तैयार नहीं होता जब तक कि इस महबूब तरीन चीज को तर्क करने पर उसे उससे भी ज्यादा कोई बड़ी मोहब्बत मिलने की उम्मीद ना हो। तो जब तक हम अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे ना, हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होगी। ये था पहला दर्जा।